بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتا متروں، آج کے کارکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 154 سے 157 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری پرہیزگار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور نسندے ہم تھوڑے بھے، تھوڑی بھوک، کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے، اور ہے پیغمبر، آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے، اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شوتو، حضرت عباس علیہ السلام کے جنم دیوس کے شبھ اوسر پر ریڈیو تہران آپ سب کی سیوا میں ہاردک بدھائی پرستوت کرتا ہے۔ آج گروار ہے، اس فند کی 28، شابان کی 4 اور مارچ کی 18 تاریخ۔ شوتو، ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ وے میں 41 میٹر بینڈ برابر 7,445 کلو ہرٹز پر سن رہی ہیں۔ ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو اوشیہ پسند آئے گا۔ پتر وہار کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir۔ جبکہ تازہ سماچاروں سے اوگت ہونے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ شوتا، ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ صدا کی بھانتی انتراشٹریہ سماچار سنیں گے، اس کے پشچات آپ سنیں گے دینک کاریکرم راج نیتک چرچا، اس کے پشچات حضرت عباس علیہ السلام کے جنم دیوس کے شبھ اوسر پر آپ سنیں گے ہمارا وشیش کاریکرم، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا ٹکاؤ آرتھک وکاس۔ شروتاؤ، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ محمد مہدی سے سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کے ودیش منتری کا کہنا ہے کہ ایران کورونا اور پرتیبندھ دونوں مورچوں پر جیت رہا ہے۔ ایران کے رکشا منتری نے کہا ہے کہ پرترکشا کے ادیشوں کو پراپت کرنے کے لیے پوری شکتی کے ساتھ پریاس جاری رہیں گے۔ اذان سے نیند میں خلل سمبندی خط پر آل انڈیا امام ایسوسیشن کے ادھیکش مولانا ساجد رشیدی نے کہا ہے کہ رات 2 بجے تک جاگنے والوں کو اذان سے دقت ہوتی ہے۔ یمنی سینا نے محارب میں کئی علاقوں کو آزاد کروا لیا ہے۔ اور اب آپ محمد مہدی سے وستار سے سماچار سنیے۔ ودیش منتری نے عید نوروز کے اوسر پر اپنے سندیش میں بل دے کر کہا ہے کہ اس بار بھی لوگوں کے پریاس، دھیر اور پرتیاگ دو خطرناک وائرسوں پر وجے کا نمنترن دے رہے ہیں، ایک کورونا اور دوسرے پرتیبندھ۔ ودیش منتری جواد ظریف نے عید نوروز کے اوسر پر آج اپنے ویڈیو سندیش میں کہا کہ غیر قانونی پرتیبندھوں کے کارن کورونا وائرس سے مقابلے میں دگنا پریاس کرنے پڑے ہیں۔ ودیش منتری نے اپنے ویڈیو سندیش میں بل دے کر کہا ہے کہ ایرانیوں نے اپنے کئی ہزار سال پرانے گوروپورن اتہاس میں نہ کیول چنوتیوں اور سمسیاؤں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ سمجھ بوجھ اور سمرستا سے کام لے کر سمسیاؤں کا سمادھان کر لیا، اور حملہ کرنے والوں کو اپنی سمرد سنسکرت میں ولے کر لیا۔ ایران کے ودیش منتری کے سندیش میں آیا ہے کہ جو ایرانی وشو کے دوسرے چھیتروں میں رہتے ہیں، وہاں بھی انہوں نے اپنی گورمانوت سنسکرت کے پرچار پرسار میں سنکوچ سے کام نہیں لیا ہے۔ اسی پرکار اس ویڈیو سندیش میں آیا ہے کہ کورونا مہاماری نے ہر چیز سے ادھک درشا دیا ہے کہ دنیا کی بڑی شکتیاں بھی دکھائی نہ دینے والے وائرس کے پرکوپ سے سرکشت نہیں ہیں۔ ودیش منتری نے اپنے ویڈیو سندیش میں کہا ہے کہ عید نوروز کا سندیش دوستی، پریم، شانتی، سمرستا اور پرسنتا ہے۔ ईरान के प्रतिरक्षा मंत्री ने बल देकर कहा है कि प्रतिरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति के साथ प्रयास जारी रहेंगे। प्रतिरक्षा मंत्री ब्रिगेडियर अमीर हातिमी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कहा कि जारी वर्ष में समस्त सीमाओं और खतरों के बावजूद हम रक्षा के क्षेत्र में ध्यान योग्य सफलता के साक्षी रहे हैं। उन्होंने ईरान पर हथियारों के प्रतिबंधों की अवधि में वृद्धि हेतु अमेरिकी प्रयासों की ओर संकेत करते हुए कहा कि ईरान पर वर्चस्व जमाने और उस पर हावी होने के लिए बहुत सारे कार्य अंजाम दिए गए और अंजाम दिए जा रहे हैं, किंतु अंत में दुश्मनों के षड्यंत्र न केवल विफल हो गए बल्कि क्षेत्र की स्थिति अमेरिका और उसके घटकों के खिलाफ हो गई। प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि आज ईरान की जो इज्जत व प्रतिष्ठा है वो इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन और ईरानी जनता के प्रतिरोध और अंतर्दृष्टि का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ईरान की सशस्त्र सेना ने महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है। ब्रिगेडियर अमीर हातिम ने बल देकर कहा कि उन्नति के शिखर तक पहुंचने में हम पूरी शक्ति के साथ ईरानी जनता व लोगों के साथ खड़े हैं। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रही हैं। रॉबर्ट माली ने कहा है कि हम समय बर्बाद नहीं करेंगे और ईरान के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं। ईरान के मामलों में अमेरिकी सरकार के विशेष प्रतिनिधि ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका और ईरान परमाणु समझौते को जीवित करने के संबंध में ऐसे समझौते पर पहुंच जाएंगे जो दोनों पक्षों के हित में होगा और उससे क्षेत्रीय देशों के हितों की आपूर्ति भी होगी। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार रॉबर्ट माली ने अमेरिका के गैर कानूनी और अत्याचार पूर्ण प्रतिबंधों को समाप्त किए जाने की ओर कोई संकेत नहीं किया और कहा कि अगर ईरान किसी शर्त के बिना परमाणु समझौते में वापस आना चाहता है तो अमेरिका क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा कि अगर ईरान किसी शर्त के बिना परमाणु समझौते में वापस आ जाता है तो अमेरिका भी परमाणु समझौते में वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम समय बर्बाद नहीं करेंगे और ईरान के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं और अब ईरान की बारी है कि वो जवाब दे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के मध्य अंत में समझौता हो जाएगा जो सबके हित में होगा, जो दोनों देशों के हित में होगा और क्षेत्रीय देशों के भी हित में होगा। ज्ञात रहे कि जो बाइडेन ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले कहा था कि वो ईरान के साथ होने वाले परमाणु समझौते में वापस आ जाएंगे, परंतु अब उनकी सरकार इसके लिए शर्त लगा रही है और कह रही है कि जब ईरान पूरी तरह परमाणु समझौते में अपने वचनों पर अमल करेगा तभी अमेरिका परमाणु समझौते में वापस आएगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम कैदियों को एक दूसरे के हवाले करने के लिए ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। फार्स न्यूज के मुताबिक जलीना पोर्टर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैदियों को एक दूसरे के हवाले करने के विषय पर कहा, ये उन विषयों में शामिल है जिस पर ईरान के साथ बातचीत करना चाहते और उसके नतीजों को कबूल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने बयान में दावा किया कि हम ईरान के साथ अर्थपूर्ण कूटनीति और सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर वो हमारे साथ वार्ता की मेज पर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। गौरतलब है कि मई 2018 में ट्रंप के परमाणु समझौते से एक पक्षीय रूप से निकलने के ऐलान के बाद जो बाइडेन ने इस समझौते में अमेरिका को वापस लाने की इच्छा जताई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने व्यवहारिक रूप से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रही हैं। अजान से नींद में खलल संबंधी खत ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि रात 2-2 बजे तक जागने वालों को अजान से दिक्कत होती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति के सुबह की अजान से नींद में खलल होने संबंधी खत पर जो उन्होंने जिलाधिकारी को लिखा था, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि जो लोग अधर्मी और रात 2-2 बजे तक जागते हैं उन्हें ही अजान से दिक्कत होती है, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे हिंदू संस्कृत में भी जल्दी सोने और जल्दी उठने पर बहुत बल दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर तीनों विवादित कृषि कानून सरकार ने वापस नहीं लिया तो किसान आंदोलन की अगली कार्रवाई के तहत कुछ निजी कंपनियों के गोदामों को निशाना बनाया जाएगा। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 100 दिन से अधिक हो चुके हैं। ये आंदोलन पिछले साल नवंबर में शुरू है। भारतीय किसान यूनियन BKU के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग करते हुए साफ तौर पर कहा है कि अगर तीनों कानून वापस न लिए गए तो निजी कंपनियों के गोदामों को निशाना बनाया जाएगा। यमनी सेना और स्वयंसेवी सेना के जवानों ने सऊदी समर्थन प्राप्त लड़ाकों को पीछे धकेलते हुए महारी प्रांत के कई हिस्सों को पूर्ण रूप से नियंत्रण क्षमा कीजिएगा यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों ने सऊदी समर्थन प्राप्त लड़ाकों को पीछे धकेलते हुए महारी प्रांत के कई हिस्सों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बुधवार को यमनी बलों ने महारिब के अल आतिफ इलाके को आजाद करा लिया। यमनी सैनिकों और अंसारुल्लाह आंदोलन के इलाकों ने अलकायदा आतंकवादियों और सऊदी एजेंटों के साथ भीषण लड़ाई के बाद इस इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं हसन अब्बास और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम पहले हजरत अब्बास के शुभ जन्मदिवस के अवसर पर पवित्र नगर कर्बला से एक रिपोर्ट पेश करेंगे। ईरान से संबंध विस्तृत करने के ब्राजील की सेनेट में पारित हुए प्रस्ताव के विषय पर भी एक रिपोर्ट सुनवाई जाएगी। ब्रिटेन में पुलिस के अधिकार बढ़ाने के बिल के व्यापक विरोध के बारे में भी एक रिपोर्ट कार्यक्रम में शामिल रहेगी, जिसके बाद भारत में हमारे संवाददाता इस देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस के विषय से। इस अवसर पर पवित्र नगर कर्बला में उनके रोजे पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। एक रिपोर्ट दी है कर्बला से जलाल खालिदी ने, जिसे पेश कर रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
एक बार फिर 4 शाबान की पावन तारीख आ गई है, हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस की तारीख। ज़ारीन का मानना है कि उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पवित्र रोजे में जाने से पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे में जाना चाहिए, ताकि उनसे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ध्वजावाहक हैं, उनके रोजे में प्रवेश की अनुमति ले सकें। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत अली और हजरत उम्मुल बनीन की गोद में इस तरह पले बढ़े कि स्वाभिमान, शौर्य और दूरदर्शिता व अंतर्दृष्टि का प्रतीक बन गए। हजरत अब्बास अलमदार की एक अहम विशेषता बसीरत या अंतर्दृष्टि है। सलाम हो आप पर, जो अंतर्दृष्टि के साथ अपने रास्ते पर डटे रहे। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने अंतर्दृष्टि की परिभाषा इस प्रकार की है। अंतर्दृष्टि यानी क्या? अंतर्दृष्टि का मतलब है चीजों को भांपना और सही को पहचानना, फितनों की धूल में भी रास्ते को ढूंढ लेना और समझना कि सही रास्ता क्या है। ज़ारीन के भारी भीड़ के बीच हमें एक ईरानी बुजुर्ग मिले, जो 6 साल से इराक में पवित्र स्थलों के पुनर्निर्माण में व्यस्त हैं। बयान नहीं किया जा सकता मैं हजरत अब्बास और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के संबंध में अपनी श्रद्धा को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं नजफ में हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोजे में हजरत फातिमा علیہ السلام کے نام سے بنے پرانگڑ میں کام کرتا ہوں۔ آج انہیں یہ سوبھاگیہ ملا ہے کہ وہ ایرانی راشٹر کی اور سے حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کے نکٹ اپستھت ہوں۔ پوتر نگر کربلا سے آئی آر آئی بی کے لیے جلال خالدی کی رپورٹ۔
ब्राजील की सेनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके इस्लामी गणतंत्र ईरान से अपने रिश्तों विशेषकर आर्थिक व व्यापारिक संबंधों को विस्तृत करने पर बल दिया है। एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं साओ पाउलो से नेमतुल्ला शेखी, जिसे आवाज दी हमारे साथी सैयद मिसम ने।
ब्राजील की सेनेट ने एक अहम कदम उठाते हुए देश के सेनेटरों की सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ ब्राजील के संबंधों को अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया है। इस प्रस्ताव में जो पहली बार ब्राजील की सेनेट में पेश किया गया, ब्राजील व ईरान के संबंधों के 118 वर्षीय इतिहास की तरफ इशारा करते हुए दोनों देशों के रिश्तों में इन संबंधों विशेषकर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों की अहमियत को दर्शाया गया और इन संबंधों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ब्राजील की संसद की भूमिका पर बल दिया गया है। ब्राजील में ईरान के राजदूत कहते हैं, ब्राजील की संसद में सेनेटरों की सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच दोस्ती गुट का गठन किया जाएगा। इसी तरह का एक दोस्ती गुट पिछले साल प्रतिनिधि सभा के माध्यम से भी बनाया गया था, इसलिए अब दो संसदीय गुट हैं जो इन संबंधों को बढ़ावा देने में हमारी मदद करेंगे। दोनों देशों के संबंध 118 साल पुराने हैं जो हमेशा परस्पर सम्मान पर आधारित रहे हैं। ये संबंध दोनों देशों के राजनीतिक हालात से प्रभावित नहीं हुए हैं। बोल्सोनारी की सरकार से भी हमारे संबंध परस्पर सम्मान पर आधारित हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। हमें अपने देश में जिन चीजों की जरूरत है, विशेषकर खाद्य व कृषि सामग्री, वो ब्राजील में बड़े पैमाने पर पैदा होती है और हम उन्हें ब्राजील की मंडियों से हासिल करते हैं। इसके बदले में ईरान के पेट्रोकेमिकल पदार्थ, रासायनिक खादें और तेल उत्पादों की ब्राजील के बाजारों में व्यापक स्तर पर खपत हो सकती है। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि दोनों देशों की आर्थिक गुंजाइशों से उचित ढंग से लाभ उठाएं, क्योंकि दोनों देशों की मंडियों की क्षमता काफी अधिक है। हमें दोनों देशों के बीच व्यापार में विविधता लानी चाहिए और मैं ईरान के व्यापारियों से अनुरोध करता हूं कि वे ब्राजील के बाजार पर विशेष ध्यान दें। ब्राजील में ईरानी दूतावास, मैं और मेरे सहयोगी ईरान व ब्राजीली व्यापारियों की सेवा में उपस्थित हैं ताकि वे आसानी के साथ आपसी संबंधों को अधिक बेहतर बनाएं और परस्पर व्यापारिक गतिविधियों को कार्यान्वयन के चरण तक पहुंचाएं। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में अपनी उपस्थिति को विस्तृत करने में व्यस्त है और कृषि, खदान, पैदावार, सेवा और श्रम शक्ति के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। ईरान इस क्षेत्र में ब्राजील के अहम आर्थिक घटकों में से एक है। ईरानी व्यापारियों ने भी हालिया वर्षों में दक्षिणी अमेरिका के सबसे अहम देश और दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। नेमतुल्ला शेखी, IRIB न्यूज, साओ पाउलो।
ब्रिटेन में सरकार पुलिस के अधिकार बढ़ाने का बिल संसद में पेश करने जा रही है, लेकिन इसी बीच पुलिस के हाथों एक युवती की बर्बर हत्या ने लोगों को इस बिल के मुकाबले में एकजुट कर दिया है। अनेक सांसदों ने भी इस बिल का विरोध किया है। मुश्तबा कासिम जादे की रिपोर्ट सुनिए रविश जैदी की जबानी।
सारा एवरेट, अ वुमन हुज फैमिली।
ब्रिटेन की पुलिस के हाथों एक युवती की बर्बर हत्या और देश में बढ़ती अशांति पर आपत्ति करने वालों के दमन और गिरफ्तारी के बाद ब्रिटेन की सरकार पुलिस के अधिकारों में वृद्धि के बिल को संसद में पारित कराने की कोशिश में है। इस बिल के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए पुलिस को और अधिकार देगा। इस बिल का विरोध व्यापक होता जा रहा है। भयानक है, इस तरह के फैसले किसी समाज के लिए अच्छे चिन्ह नहीं है। त्रासदी की गहराई तब स्पष्ट होती है जब पुलिस के अधिकारी जिन्हें जनता की सुरक्षा सुनिश्चित बनानी चाहिए इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं। अब सरकार पुलिस को और अधिक ताकत और अधिकार देना चाहती है ताकि उसे जनता के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। पुलिस के अधिकार बढ़ने से और अधिक त्रासदियां सामने आएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में जो सर्वेक्षण कराया है उसके नतीजों से पता चलता है कि ब्रिटेन में इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाली 18 से 24 साल की 97% लड़कियां और औरतें यौन उत्पीड़न और बलात्कार का शिकार हुई हैं। सिर्फ पिछले एक साल में ब्रिटेन में 118 लड़कियों और औरतों की हत्या और इस पर व्यापक आपत्तियों ने कुछ सांसदों को भी प्रतिक्रिया जताने पर मजबूर कर दिया है। इस महिला सांसद का कहना है कि सच में मैं बहुत दुख से कह रही हूँ, ब्रिटेन की महिलाएं अपने खिलाफ हर दिन होती घटनाओं से बहुत अधिक गुस्से में हैं। कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ब्रिटेन की पुलिस ने शहरों को सुरक्षा प्रदान करने के बजाय सुरक्षा की मांग करने वालों के दमन का रवैया अपना रखा है। सारा एवर्ट की हत्या ने पुलिस के अधिकारों व ताकत को बढ़ाने के सरकार के बिल को कठिनाई में डाल दिया है और अभी से अनेक सांसदों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है और दिन ब दिन आंकड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। गुरुवार को जारी वर्ष में पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 35,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र राज्य की है। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत में वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस में एक बार फिर तेजी आ रही है और COVID-19 के नए मामलों में 24% की वृद्धि हुई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 35,871 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 172 लोग जान की बाजी हार गए हैं। इस घातक बीमारी में भारत में अब तक मरने वालों की संख्या 1,59,216 तक पहुंच गई है। पूरे भारत में महाराष्ट्र से कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,179 नए मामले सामने आए हैं, जो नए वर्ष में सबसे अधिक हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 84 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही इस राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 53,080 हो गई है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों के 3 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में COVID-19 की दूसरी लहर की बाबत सचेत किया था और इसे रोकने के लिए तेज और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस की सबसे चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश की है। अधिकारियों के अनुसार भारत के 70 जिलों में 150% से अधिक कोरोना मामले बढ़े हैं, जिनमें अधिकतर जिले पश्चिमी भारत के हैं। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामले निरंतर बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 536 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने अवेयरनेस काफी बढ़ाई है, लोगों को सतर्क रहने के लिए भी हम कह रहे हैं कि लोग सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें और मतलब लथार्जिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार लोगों को लगता है ना कि भैया चलो अब तो खत्म हो गया, अब बिल्कुल मस्त हो जाएं, वो जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मास्क लगाएंगे, थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। दिल्ली के अंदर सिचुएशन कम्पेयर टू अदर सिटीज और अदर स्टेट्स काफी अभी कंट्रोल में है।
दिल्ली में इस समय कोरोना के 2,702 एक्टिव मामले हैं, जो जनवरी के बाद सबसे अधिक हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شروتاؤ, ہماری آج کی سبھا کا انتم کارکرم ہوگا ٹکاؤ آرتھک وکاس, لیکن اس سے پہلے پرستت ہے حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کے اپلکش میں ہمارا وشیش کارکرم. دوستو, حضرت علی علیہ السلام کے سپوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کے اوسر پر ایک وشیش کارکرم لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں. حسن عباس کا سلام سویکار کریں. شعبان مہینے کے چوتھے دن حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ایک شیشو نے جنم لیا جس کا نام عباس رکھا گیا. وہ بچہ اتنا سندر تھا کہ اسے قمر العشیرہ یا قمر بنی ہاشم یعنی قبیلے کا چاند اور بنی ہاشم کا چاند کہا جانے لگا. آگے چل کر اس بچے میں اتنے گن پیدا ہوئے کہ اسے ابو الفضل یا گنوں کے پتا یا سوامی کی اپادھی دی گئی. اس شبھ دن پر ہم آپ سب کی سیوا میں ہاردک بدھائی پیش کرتے ہیں. جب بھی کوئی حضرت عباس علیہ السلام کا نام سنتا ہے تو انایاس ہی وہ شردھا سے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے. اس میں اس بات کا انتر نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے یا سنی, عیسائی ہے یا پارسی, وہ سبھی کے لیے جانے پہچانے ہیں اور سبھی کے دل میں بستے ہیں. ایک آرمینین عیسائی رازمیک ہاکوپیان کہتے ہیں, پریم, سنیہ, ساہس, وفاداری اور شور ویرتا وہ وشیشتائیں ہیں جو وبھن دھرموں کے انوسار لوگوں میں ہونی چاہیے. یہ وشیشتائیں صرف مسلمان یا عیسائی ہونے میں سیمت نہیں ہیں اور ایشور نے اپنے سبھی بندوں کو ان گنوں سے سسجت ہونے کا آدیش دیا ہے. حضرت عباس علیہ السلام ان گنوں میں چرم پر تھے. حضرت عباس علیہ السلام اپنے ساہس, بہادری اور شور ویرتا کے لیے جانے جاتے ہیں, لیکن ان کی بہادری, گن اور وبھن وشیشتاؤں کی جڑ یہ نہیں تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے سپتر اور ایک ویر پریوار سے تھے, بلکہ ان کی بہادری و ساہس, گنوں و پرتشٹھا کا سب سے بڑا راز ایشور کی اپاسنا اور پیغمبر و اماموں کا بھرپور آگیا پالن تھا. ان کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں, سلام ہو آپ پر ہے ایشور کے اچھے بندے. ایشور اس کے پیغمبر اور حضرت علی و امام حسن و حسین کا آگیا پالن کرنے والے. اس زیارت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتر امام جعفر صادق علیہ السلام, جنہوں نے پہلی بار اسے پڑھا تھا, حضرت عباس علیہ السلام کو کچھ اہم وشیشتاؤں سے پکارتے ہیں جو ان کی نشٹھا اور ایشور کی داستہ کی سوچک ہیں, جیسے ایشور کا بھلا بندہ, ایشور کا آگیا پالک, پیغمبر اسلام کا انوسرن کرتا. اماموں, وشیش کر اپنے کال کے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کا آگیا پالک. ایشور کی بندگی ایک ایسا استھان ہے جسے حاصل کرنے کا مطلب ہے سبھی انی استھانوں کو پراپت کر لینا. اس اہم بات کی پشٹی دھارمک سروتوں سے بھی ہوتی ہے اور مہان دھارمک ہستیوں کا چرتر بھی اس کی پشٹی کرتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں, جب ایشور کسی کو چاہتا ہے تو اسے اپاسنا اور اچھی بندگی کے استھان تک پہنچا دیتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام بندگی کی چرم سیما پر تھے. وہ جتنا ایشور سے نکٹ ہوتے جاتے تھے اتنا ہی لوگوں کے پرتی ادھک ادار و ونمر ہوتے جاتے تھے. حضرت عباس ابن علی علیہ السلام نے بندگی کی چوٹیوں کو سر کر لیا تھا, جس کی ایک جھلک مدینے سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں ان کی سکریہ موجودگی ہے.
5 महीने से अधिक समय तक जारी रहने वाली इस यात्रा में उन्होंने असंख्य कठिनाइयां सहन की, लेकिन ईश्वर के दुश्मनों की ओर से दिए जाने वाले बड़े बड़े प्रलोभनों पर लेश मात्र भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके अस्तित्व में ईश्वर के अलावा किसी और का भय था ही नहीं और सांसारिक मोहमाया को तज देना उनके लिए बहुत सरल था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी अपने इमाम का विरोध नहीं किया और इससे सिद्ध होता है कि वे अपने समय के इमाम को, चाहे वे इमाम हसन हों या इमाम हुसैन, ईश्वरीय प्रतिनिधि मानते थे और उसके विरोध को ईश्वर का विरोध समझते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के आध्यात्मिक स्थान व ज्ञान के बारे में इतिहास में है कि वे बहुत अधिक धार्मिक व पवित्र स्वभाव के थे। लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे और उन्हें भलाई व उपकार करने वाले के रूप में जानते थे। उनका मधुर स्वभाव लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की दूरदर्शिता व ज्ञान की वजह से लोग अपने कामों में उनसे सलाह लिया करते थे। वे लोगों के ज्ञान संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते थे, क्योंकि उनका ज्ञान बड़ा व्यापक था। लोगों की सहायता करना और उनकी समस्याओं को दूर करना हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आदत थी। यही वजह है कि उन्हें बाबुल हवाइज अर्थात जरूरतें पूरी होने का दरवाजा कहा जाता है। इतिहास में बड़ी इस्लामी हस्तियों की महानता का एक अहम कारण यह है कि उनका विश्वास था कि इस संसार में वे अकारण नहीं आए हैं और ईश्वर ने उन्हें बुद्धि व अंतरात्मा की अनुकंपा इसलिए प्रदान की है कि वे ईश्वर और अपने जैसे इंसानों से अपने संबंधों को सुव्यवस्थित करें और विभिन्न परिस्थितियों में उचित कदम उठाएं। ईश्वर के प्रिय बंदे इस बिंदु को समझ चुके हैं कि वे अमर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं और इस राह में उन्हें सफर के लिए आवश्यक व मूल्यवान सामान अपने साथ रखना है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही इंसान थे। उनका पालन पोषण ऐसे घराने में हुआ था जो अपने लिए धन एकत्रित नहीं करता था, बल्कि उनके धन से गरीब और वंचित लोगों को फायदा होता था। इसी के साथ उस घर के लोगों की इज्जत, प्रतिष्ठा, महानता, ईमान और त्याग व बलिदान चरम सीमा पर था। ईमान और ईश्वर पर अटल भरोसा ईश्वर के दुश्मनों से मुकाबले में दुनिया के बड़े लोगों की विजय का रहस्य समझा जाता है। इतिहास की बेजोड़ हस्ती हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम में भी ये ईश्वरीय विशेषता पाई जाती थी। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास की जियारत में कहा है, मैं गवाही देता हूं कि आपने एक क्षण के लिए भी ढिलाई नहीं की और पीछे नहीं हटे, बल्कि आप ईमान और धर्म में दूरदर्शिता पर अटल रहे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपने समय में अरब जगत के सबसे साहसी और बहादुर लोगों में से एक माना जाता था। यहां तक कि किशोरावस्था में भी उन्होंने सिफीन नामक युद्ध में अपने साहस और रणकौशल से सबको चकित कर दिया। इतिहास में है कि सिफीन की जंग में, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम और मुआविया के बीच हुई थी, एक किशोर हजरत अली की सेना से निकला जिसके चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी। मैदान में पहुंचकर उसने शत्रु सेना में से किसी को अपने मुकाबले में आने को कहा। मुआविया ने अपने एक शक्तिशाली कमांडर अबू शासा से जाकर लड़ने को कहा। अबू शासा ने कहा कि लोग मुझे 1000 सिपाहियों के बराबर समझते हैं और तुम मुझे एक किशोर से लड़ने के लिए भेजना चाहते हो। इसके बाद उसने अपने एक बेटे को लड़ने के लिए भेजा। कुछ ही क्षण में उस किशोर ने अबू शासा के बेटे को ढेर कर दिया। अबू शासा के 7 बेटे थे। उसने अपने दूसरे बेटे को लड़ने के लिए भेजा, लेकिन उसका भी वही अंजाम हुआ। उसने बाकी बेटों को एक के बाद एक उस किशोर से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन सब के सब ढेर हो गए। अंत में अबू शासा लड़ने के लिए पहुंचा। उस किशोर ने उसे भी मार गिराया। इसके बाद मुआविया की सेना के किसी भी सिपाही में उस किशोर से लड़ने की हिम्मत न हुई। उस किशोर के साहस और रणकौशल से सभी आश्चर्यचकित थे और किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है। यहां तक कि मुआविया के सिपाही कहने लगे कि ये अली हैं जो चेहरा छिपा कर लड़ने आए हैं। जब वो किशोर अपने लश्कर की ओर पलटा तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसके चेहरे पर पड़ी नकाब उल्टी और सभी लोग दंग रह गए کیونکہ وہ کشور کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی علیہ السلام کے سپوتر حضرت عباس علیہ السلام تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنے سمے کے اماموں کا پورن روپ سے انوسرن کرتے تھے اور ان کے آگیاکاری تھے۔ انہوں نے اپنی آخری سانس تک اپنے امام کا ہر سمبھو اور جان دے کر سمرتھن کیا تھا اور ان کے دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پتا کی شہادت کے بعد اپنے بھائیوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی سہایتا میں پوری شکتی لگا دی اور امام حسین کی سہایتا کرتے ہوئے کربلا میں اپنی جان نیوچھاور کر دی اور امر ہو گئے۔ ان کا نام وفاداری اور بہادری کا پریائے بن چکا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتر امام زین العابدین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ایشور میرے چچا عباس پر دیا کرے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے مارگ میں قربانی دی اور اپنے پرانوں کو اس طرح نیوچھاور کیا کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ ایشور نے انہیں ان کے دونوں کٹے ہاتھوں کے بدلے میں دو پنکھ پردان کیے ہیں۔ ایشور کے نکٹ حضرت عباس کا استھان اتنا اونچا ہے کہ پرلے کے دن ان کے استھان کو دیکھ کر سبھی شہید کامنا کریں گے کہ کاش انہیں بھی یہ استھان ملا ہوتا۔ دوستو، اسی کے ساتھ یہ وشیش کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ ہم ایک بار پھر آپ سب کی سیوا میں حضرت عباس علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کی بدھائی پیش کرتے ہیں۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔ ٹکاؤ آرتھک وکاس۔
دوستوں، کارکرم ٹکاؤ آرتھک وکاس کی کنیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور سید مسلم کا سلام سویکار کیجیے۔
آج اس سچائی سے سبھی اوگت ہیں کہ کرشی وبھاگ بہت سے دیشوں میں ارتھ ویوستھا کا آدھار ہوتا ہے۔ ایران میں بھی کرشی لوگوں کے کھان پان کے لیے آوشیک چیزوں کی آپورتی کے ساتھ ہی دیش کی ارتھ ویوستھا میں مہتوپورن بھومیکا رکھتا ہے، اور نشچت روپ میں ایران میں کرشی وبھاگ دیش کی ارتھ ویوستھا کو آگے بڑھانے میں پربھاوشالی بھومیکا نبھا سکتا ہے۔
ایران میں کرشی کا کھیتر کھیتی باڑی، پشو پالن، مچھلی کا شکار اور جنگلوں سے پراپت ہونے والے اتپادوں پر آدھارت ہے۔ ایران میں کرشی کھیتر کے اتپاد دیش کے نریات کا بھی مکھ بھاگ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ایران میں چونکہ چاروں موسم ہوتے ہیں، اس لیے ایران میں ہر طرف کے پھل اور کرشی اتپاد بے حد اچ کوٹی کے ہوتے ہیں۔ ایران دنیا کے ان پانچ دیشوں میں سے ایک ہے جو 20 پرکار کے कृषि उत्पादों के मुख्य उत्पादक हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने केसर और पिस्ते के बारे में चर्चा की थी, आज हम ईरान के कुछ अन्य उत्पादों पर चर्चा कर रहे हैं।
ईरान चूंकि मौसम और जलवायु की नज़र से एक विविधतापूर्ण देश है, इसलिए इस देश में तरह तरह के पेड़ पौधे भी मिलते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ईरान में 12,000 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसे बहुत कम पेड़ हैं जो ईरान के किसी भी क्षेत्र में ना पाए जाते हों। इसके साथ ही ईरान में कैस्पियन सागर के क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे ईरान में 300 दिन तक धूप रहती है, जिसकी वजह से कृषि उत्पाद विशेषकर बागों में पैदा होने वाले उत्पाद बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं। ईरान में 3,70,00,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिनमें से हर साल 1,80,00,000 हेक्टेयर में खेती की जाती है। ईरान अनार सहित कई कृषि उत्पादों में विश्व में काफ़ी आगे है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 35,00,000 टन अनार की पैदावार होती है, जिसमें ईरान में 10,00,000 टन पैदा होता है, अर्थात दुनिया में पैदा होने वाले अनार का 1/4 भाग ईरान में पैदा होता है। ईरान दुनिया में अनार पैदा करने वाले बड़े देशों में से है।
ईरान ईरानी संस्कृति में स्वर्ग का फल, प्रेम, सौभाग्य व समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है। अनार ईरान का स्थानीय फल है जो ईरान के केंद्रीय रेगिस्तानी इलाके में पैदा होता है। अनार ईरान के दश्त कबीर और कबीर लूत नामक रेगिस्तानी इलाकों में होता है। इन रेगिस्तानी इलाकों से ईरान के जितने प्रांतों की सीमा मिलती है, वहां हमेशा से ही अनार के बाग लगाए जाते रहे हैं। अनार दुनिया के 10 सबसे अच्छे फलों में गिना जाता है और अनार ऐसा पेड़ है जिसका फल, फूल, पत्ते और जड़ तक का औषधीय प्रयोग है। अनार के बीज का तेल भी निकाला जाता है, जिसे रंग और श्रृंगार उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह अनार के छिलके में जो टेटन है, वो दवा बनाने के लिए उद्योग में काम आता है। अनार एंटी हिस्टामिन से भरपूर होता है और इसे खाद्य उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अनार में एंटी ऑक्सीडेंट की भी भरमार होती है। अनार में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट ग्रीन टी से 10 गुना अधिक होता है। इसी तरह अनार में विटामिन सी और पोटेशियम की भारी मात्रा होती है और ये फल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मसूड़ों और दांतों की सुरक्षा करता है, दिल की बीमारियों को कम करता है और कैंसर जैसे रोग के उपचार में उपयोगी होता है। यही वजह है कि अनार को स्वास्थ्य का रत्न कहा जाता है।
ईरान के अनार में कई विशेषताएं होती हैं जो अन्य देशों में पैदा होने वाले अनारों से उसे अलग बनाती हैं। ईरान के अनार स्वाद में बेहतर होते हैं और विश्व मंडी में उसकी मांग बहुत है। इसके साथ ही ईरान में पैदा होने वाले अनारों में विविधता भी बहुत अधिक है। ईरान में लगभग 760 प्रकार के अनार होते हैं। ये सारे अनार रंग, स्वाद, पकने के समय, खट्टेपन, मिठास, बाजार में मांग, अधिक दिनों तक सुरक्षित रखे जाने जैसी विशेषताओं की दृष्टि से अलग अलग हैं। लेकिन इन सब में ईरान के सावा क्षेत्र के खट मिठे अनारों का अलग स्थान है। सावा के अनारों की मांग पूरी दुनिया में बहुत अधिक है। सावा के अनारों में एक खास बात यह होती है कि उसका रस बहुत गाढ़ा होता है। इस अनार का दुनिया में अपने प्रकार के सभी अनारों से अधिक गाढ़ा रस होता है और इसकी वजह भी इलाके का खास माहौल और मौसम है। सावा के अनार का छिलका लाल होता है और लाल होने के साथ ही साथ मोटा भी होता है, जिसकी वजह से सावा का अनार जल्दी खराब नहीं होता।
ईरान में सावा के अलावा भी बहुत से क्षेत्र अनार के लिए बहुत मशहूर हैं। ईरान के फार्स प्रांत का नैरीज जिला भी ایران میں انار کا کیندر سمجھا جاتا ہے۔ اس ضلع میں پیدا ہونے والے انار کی دیش کے بھیتر تو مانگ ہے ہی، اس کے ساتھ ہی دکشنی کوریا، روس، مدھیہ ایشیائی اور فارس کی کھاڑی کے تٹورتی دیشوں کے ساتھ ہی ساتھ کئی یوروپیہ دیشوں میں بھی بہت مانگ ہے، اور ان اناروں کو ان سبھی دیشوں کے لیے نریات کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایران کے پشچم اتر میں استھت جلفا کی ارس ندی کے تٹ پر انار کے باغ لگائے گئے ہیں، جہاں کے کھٹے میٹھے انار پوری دنیا میں مشہور ہیں، لیکن اس علاقے کے اناروں کو ایران کے پڑوسی دیش ارمنیا اور آذربائیجان میں خاص طور پر پسند کیے جاتے ہیں۔
ایران کے لورستان پرانت کے کودشت ضلع میں بھی خاص موسم کی وجہ سے بڑے اچھے انار پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس پرانت کے دکشن پشچم میں استھت سیاب علاقے کے اناروں کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہاں کے اناروں کو ایران میں بہت اچھے اناروں میں سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ایران میں کل 760 پرکار کے انار پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے ادھک ایرانی اور سب سے ادھک کھٹا انار گیلان پرانت میں پیدا ہوتا ہے۔ ایران کے اس اتری پرانت کے ہر علاقے میں، وشیش کر جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں، انار کے باغ نظر آتے ہیں۔ گیلان کے بے حد کھٹے اناروں کو اس کھیتر کے وشیش کھانوں میں کئی طرح سے پریوگ کیا جاتا ہے۔
کسی زمانے میں پوری دنیا میں انار نریات کرنے والا ایک ماتر دیش ایران تھا۔ ایران میں 80,000 ہیکٹر انار کے باغ ہیں، اور ایران میں ہر سال 7,500,000 ٹن انار پیدا ہوتے ہیں۔ انار ایران میں کرشی وبھاگ کا ایک مہتوپورن اتپادن ہے، اور اس کی بڑی ماترا نریات بھی کی جاتی ہے۔ ایران میں پیدا ہونے والے 90% انار کو نریات کر دیا جاتا ہے۔ ایران کے اناروں کے مکھیہ بازاروں میں افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، تاجکستان، ارمنیا، آذربائیجان، جارجیا، قزاقستان، بحرین، قطر، یو اے ای، کویت، عراق، ملیشیا، روس، یوکرین، ہالینڈ، جرمنی، آسٹریا، سویڈن، فرانس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، چین اور دکشنی کوریا جیسے دیشوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ایران ہر سال 1.5 لاکھ ٹن انار نریات کرتا ہے۔
ایران کا ایک انیہ کرشی اتپاد کھجور ہے۔ ایران میں 240 ہیکٹر کھجور کے باغ ہیں، اور ایران میں ہر سال 10 لاکھ ٹن سے ادھک کھجور کی فصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ایران کو کھجور کی پیداوار میں دنیا میں دوسرا استھان پراپت ہے۔ ایران کے 15 پرانتوں میں کھجور کے باغ لگائے گئے ہیں: کرمان، ہرمزگان، خوزستان، بوشہر، فارس، سیستان، بلوچستان۔ ایران کے وہ پرانت ہیں جہاں ایران کی 98% کھجور کی فصل ہوتی ہے۔ ایران میں سب سے مہنگی کھجور پیارم کہلاتی ہے، جو چاکلیٹ کی طرح ہوتی ہے۔ اس کھجور کو ایران اور انیہ دیشوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ایران کی کھجور کو کیسر، پستے، کیویئر اور قالین کے ساتھ ہی مہتوپورن اتپاد سمجھا جاتا ہے۔
ایران میں 70 سے ادھک پرکار کی کھجور پیدا ہوتی ہے۔ وبھن پرکار کی کھجوروں میں انتر ان میں شکرا کی ماترا کے لحاظ سے ہوتا ہے، مطلب کھجوروں میں انتر ان کی مٹھاس کا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسیلا بھی انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ الگ الگ کھجوروں میں شرکرا کی ماترا الگ الگ ہوتی ہے، لیکن بہت ادھک فرق نہیں ہوتا۔ مضافاتی، حلیلی، کلتے، پیاروم، آلے مہتری، مردسنگ، کپکاب، زاہدی، حاج باقری، ربی، کھجراوی، استماران اور شاہین ایران میں پیداوار ہونے والی کھجوروں کی کچھ قسموں کے نام ہیں۔ ایران میں پراپت ہونے والی کھجوروں میں سے ماتر 10% کی کھپت دیش میں ہوتی ہے، باقی 90% نریات کر دیا جاتا ہے۔ ایران کی کھجور دنیا کے 78 دیشوں کے لیے نریات کی جاتی ہے، اور بھارت ہر سال ایران سے 1.10 کروڑ ڈالر کا کھجور خریدتا ہے۔ اس طرح سے بھارت ایرانی کھجور کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ آسٹریا، جرمنی، انڈونیشیا، بریٹین، یوکرین، بیلاروس، امریکہ، اٹلی، ترکی، کوریا، چین، ڈنمارک، جاپان، چلی، عراق اور فرانس ایرانی کھجوروں کے بازاروں میں گنے جاتے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہماری آج کی چرچا یہیں پر سماپت ہوتی ہے۔ اگلے کارکرم تک کے لیے ہمیں انومتی دیجیے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شوتاؤ، ابھی آپ سن رہے تھے ساپتاہک کارکرم ٹکاؤ آرتھک وکاس، اور اب سمے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ ایران کے ودیش منتری محمد جواد ظریف کا کہنا ہے کہ ایران کورونا اور پرتیبندھ دونوں مورچوں پر جیت رہا ہے۔ ایران کے رکشا منتری نے کہا ہے کہ پرترکشا کے ادیشوں کو پراپت کرنے کے لیے پوری شکتی کے ساتھ پریاس جاری رہیں گے۔ اذان سے نیند میں خلل سمبندھی خط پر آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کے ادھیکش مولانا ساجد رشیدی نے کہا ہے کہ رات دو بجے تک جاگنے والوں کو اذان سے دقت ہوتی ہے۔ یمنی سینا نے ماری میں کئی علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ شوتاو، ہمارا یہ کارکرم آپ شارٹ وی میں 41 میٹر بینڈ برابر 7445 کلو ہرٹز پر سن رہی ہیں۔ ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو اوشیہ پسند آیا ہوگا۔ کارکرم کے بارے میں اپنے وچاروں، سجھاؤں اور پرتیکریاؤں سے ہمیں اوشیہ اوگت کرائے گا۔ پتر ویوہار کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@wsirib.ir۔ جبکہ تازہ سماچاروں سے اوگت ہونے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ تو شوتاؤ، اسی کے ساتھ ہمارا یہ کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ شبھ کامناؤں کے ساتھ آپ سے ودا چاہتے ہیں، خدا حافظ۔Thank you.